नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। अमेरिका ईरान युद्ध विराम के मद्देनजर ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शांति समझौता होने तक ईरान की संपत्तियां फ्रीज रहेंगी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने हान सियोंग सुक को देश का अगला प्रधानमंत्री नामित किया। और उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन, पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसे में ओपेक प्लस का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ शांति समझौता होने से पहले वे ईरान की संपत्तियों को फ्रीज ही रखेंगे और प्रतिबंध भी नहीं हटाएंगे। एक निजी समाचार चैनल के साथ भेंटवार्ता में उन्होंने ये जानकारी दी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौता हो जाता है तो ईरान के परमाणु संबंधी उपकरणों को हटाने और उन्हें नष्ट करने की निगरानी अमरीका ही करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर बातचीत विफल होती है तो अमेरिका ईरान की परमाणु क्षमताओं को नष्ट करने की कठोर सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अल्पकालिक समझौते में लेबनान को भी शामिल किए जाने पर वे बल नहीं देंगे। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया है कि एक रूसी ड्रोन ने चेर्नोबिल प्रतिबंधित क्षेत्र में इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन भंडारण केंद्र पर हमला किया है। यह हमला परमाणु ऊर्जा संयंत्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित ईंधन भंडारण सुविधा केंद्र की एक इमारत पर किया गया। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विकिरण का स्तर सामान्य बना हुआ है। उन्होंने बताया कि हमले में इमारत आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। हमले के समय इमारत में कोई परमाणु ईंधन नहीं था। हमले के बाद आग लग गई जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि रूस ने जानबूझकर महत्वपूर्ण परमाणु बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बढ़ती हुई लापरवाही को दर्शाती हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने वर्तमान लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री हान सियोंग सुक को देश के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ कांग हुन सिक ने इसकी घोषणा करते हुए उनके प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यापक अनुभव की सराहना की। नेशनल असेंबली से मंजूरी मिलने के बाद सुश्री हान प्रशासन के अंतर्गत पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। इससे पहले हान मियोंग सुक वर्ष 2006 से 2007 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुकी हैं। ये नामांकन ऐसे समय में हुआ है जब खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री किम मिन सियोक अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। दक्षिण अमरीकी देश पेरू में आज राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। मुख्य मुकाबला रूढ़िवादी उम्मीदवार केइको फुजिमोरी और वामपंथी उम्मीदवार रॉबर्टो सांचेस के बीच है। केइको फुजिमोरी पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी की पुत्री हैं। अप्रैल में हुए पहले चरण के मतदान में दोनों उम्मीदवारों ने 33 अन्य उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर दूसरे चरण में जगह बनाई थी। पेरू में 18 से 70 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए मतदान अनिवार्य है। देश में 2,70,00,000 से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें विदेशों में रहने वाले लगभग 12,00,000 पेरूवासी भी शामिल हैं। आर्मेनिया में संसदीय चुनावों के लिए मतदान जारी है, जिसमें सत्ताधारी सरकार पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और रूस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए जनादेश प्राप्त करना चाहती है। प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी सत्तारूढ़ सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने इसी मुद्दे पर चुनाव प्रचार किया। उधर विपक्षी पार्टियां रूस के साथ घनिष्ठ संबंधों का समर्थन करती हैं। वर्ष 2018 में सत्ता संभालने के बाद से श्री पाशिन्यान ने आर्मेनिया को यूरोपीय संघ के करीब लाए और अमेरिका की मध्यस्थता से हुए समझौते के माध्यम से पड़ोसी देश अजरबैजान के साथ शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज हुई गोलीबारी की कई घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, वहीं अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका में ओहियो के टोलेडो में एक लोकप्रिय सामुदायिक उत्सव के दौरान गोलीबारी में 12 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। स्थानीय मीडिया के अनुसार यह घटना ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के पास हुई। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। अमेरिका ईरान युद्ध विराम के मद्देनजर ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा शांति समझौता होने तक ईरान की संपत्तियां फ्रीज रहेंगी। और उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन, पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।